नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप राकेश कुमार सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुंबई में वेफ्स शिखर सम्मेलन में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, देश में कंटेंट और आइडिया की कोई कमी नहीं है। भारत मीडिया और एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करने को तैयार है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची को प्रभावी और विश्वसनीय बनाने के लिए इसे जन्म मृत्यु रजिस्टर से जोड़ने का निर्णय किया। हज यात्रा के लिए गया से 145 श्रद्धालुओं का पहला जत्था मदीना के लिए रवाना हुआ। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए देश भर से खिलाड़ियों के जत्थों का विभिन्न शहरों में पहुंचने का सिलसिला शुरू। समाचार विस्तार से। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि देश में कंटेंट और आइडिया की कोई कमी नहीं है। मुंबई में वेब्स शिखर सम्मेलन में वैश्विक मीडिया संवाद को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस क्षमता को पहचाना है। वेब्स का मंच सभी से अपनी कहानी दुनिया के सामने रखने का उचित अवसर प्रदान करने का मंच है। उन्होंने स्थानीय सामग्री का प्रचार करने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री वैष्णव ने कहा कि संस्कृति ही रचनात्मकता को प्रेरित करती है और यह सीमाओं के पार भी लोगों को जोड़ देती है। उन्होंने कहा कि सभी को ऐसी नीतियों का समर्थन करना चाहिए जो सभी सांस्कृतिक रूपों को संरक्षित करे और बढ़ावा दे।
क्रिएटर्स को एक अपॉर्चुनिटी मिली है अपना टैलेंट दिखाने के लिए वेव्स के माध्यम से, और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत आगे का सोच के हमारे नौजवानों को हमारे इस बदलते युग में एंटरटेनमेंट और मीडिया की जो दुनिया है, टेक्नोलॉजी जिस तरह से आ रही है इसमें, उस सबको ध्यान में रखते हुए वेव्स का एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट देखा है। आज कई देशों के मंत्री यहाँ पे प्रेजेंट है, करीब 60 देशों से पार्टिसिपेशन हुआ है और इसमें सभी ने इस तरह के आयोजन को सराहा है।
विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि प्रौद्योगिकी और परंपरा को मिलकर साथ साथ चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी देश की अनमोल विरासत के बारे में जागरूकता को बढ़ावा दे सकती है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि यह युवा पीढ़ियों के लिए चेतना को गहरा कर सकती है। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज कहा कि जाति जनगणना को अनुमति देकर प्रधानमंत्री ने सामाजिक न्याय को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जताई। वे राजस्थान के बीकानेर में कहा कि कांग्रेस के जाति जनगणना को लेकर लोग दो मुही बातें करते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध भी है और कटिबद्ध भी, और कांग्रेस के जमाने में 2011 में जब जाति के आंकड़े लिए गए थे लेकिन प्रकाशित नहीं किए, किसने रोका इन्हें? इसका मतलब कांग्रेस जो है दो मुही बातें करती है। 2013 में लोकसभा में इस पे बहस हुई थी और उस बहस के दौरान भी मेरे ख्याल में जो यूपीए को सपोर्ट करने वाले दल थे उन्होंने भी कहा कि जाति के आंकड़े प्रकाशित करने चाहिए, और उसके बाद हमारे यहाँ से बीजेपी की ओर से गोपीनाथ जी मुंडे बोले थे, उन्होंने भी कहा था जाति के आंकड़े प्रकाशित करने चाहिए। उस समय तो राहुल गांधी जी भी संसद में ही थे, लोकसभा में थे, क्यों नहीं पक्ष में बोले? इसलिए दो मुंह बातें कर रहे हैं कांग्रेस।
भाजपा के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि जाति जनगणना को स्वीकृति देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबित किया है कि वे सभी वर्ग के विकास का ध्यान रखते हैं। उन्होंने कहा कि जाति जनगणना कराने का निर्णय ऐतिहासिक है।
सदन के अंदर जब बिहार में 500 करोड़ खर्च करके जातीय गणना नहीं जातीय सर्वे हुआ, आर्थिक सर्वे हुआ, 94 लाख परिवार 6,000 से नीचे गरीबी में जी रहा है, 10,000 से कम आमदनी के 63% लोग बिहार में रह रहा है, हम रोजगार में आरक्षण में प्राथमिकता देंगे, जो पीछे रह गया हम उसको आगे बढ़ाएंगे, हम वैसी नीति लाएंगे जो सबके हित में हो, जो सबके सर्वस्पर्शी हो। आज ये भाव मन के अंदर समावेशी भाव क्यों नहीं आ रहा है?
भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि जाति जनगणना सामाजिक ताने बाने को और मजबूत करेगा। वे पटना में संवाददाता से बातचीत कर रहे थे। राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने कहा है कि जाति जनगणना को अनुमति मिलना समाजवादी विचारधारा के लोगों की मांग की जीत है।
हम तो लगातार इस बात को कह रहे थे कि ये मांग ऐसी है जिसको आप दरकिनार नहीं कर सकते। महत्वपूर्ण ये है कि कई सारी चीजें एक साथ क्लब्ड है। कास्ट सेंसस किससे क्लब्ड है? सेंसस के एलोकेशन से लग रहा है कभी आपके समक्ष वो प्राथमिकता में नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, 21 में आखिरी सेंसस होना था, लास्ट सेंसस होना था, आज 4 बरस बीत गए, कोई पहल कदमी नहीं। वुमेन रिजर्वेशन इससे जुड़ा हुआ, डिलिमिटेशन इससे जुड़ा हुआ, तो इस बास्केट में आप 4-4 चीजें हैं। अगर इसके लिए हम एक टाइमलाइन, एक रोड मैप नहीं बना के आते हैं तो ये झुंझुना नहीं होना।
जदयू के प्रदेश प्रवक्ता अंजुम आरा ने आज समस्तीपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए जातीय जनगणना कराए जाने के निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया।
आदरणीय नीतीश कुमार जी के जो नेतृत्व में एनडीए की सरकार रही, इमीडिएट ये कानून पास होने के बाद, बनने के बाद इमीडिएट हम लोगों ने केंद्र की सरकार से, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से आग्रह हम लोगों ने पत्र के माध्यम से भेजा किसको 9th शेड्यूल में शामिल किया जाए। इन द मीन टाइम उसके बाद जो ये कानून निरस्त हो गया था, अब आप समझ सकते हैं इस बात को कि देश का विपक्ष या फिर बिहार का विपक्ष किस तरह से राजनीतिक पाखंड कर करके आवाम को गुमराह करने की ये लोग कोशिश करे और साथ ही साथ क्रेडिट मची हुई है।
निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में सुधार लाने और मतदान प्रक्रिया को नागरिकों के लिए अधिक सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से उपाय शुरू किए हैं। आयोग अब मृत्यु पंजीकरण संबंधी आंकड़े भारत के महापंजीयक से सीधे इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्राप्त करेगा। इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि मतदाता पंजीकरण अधिकारियों को पंजीकृत मौतों के बारे में समय पर सूचना मिल सके। इससे बूथ स्तर के अधिकारियों बीएलओ को भी क्षेत्रीय दौरों के जरिए सूचना की पुनः जांच करने में सुविधा होगी और उन्हें फॉर्म 7 के अंतर्गत औपचारिक अनुरोध का इंतजार नहीं करना होगा। मतदाता सूचना पर्चियों को अधिक मतदाता अनुकूल बनाने के लिए आयोग ने उसके डिजाइन को संशोधित करने का निर्णय लिया है। मतदाता की क्रम संख्या और भाग संख्या अब अधिक प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी, जिसमें फॉन्ट का आकार बढ़ाया जाएगा। इससे मतदाताओं के लिए अपने मतदान केंद्र की पहचान करना और मतदान अधिकारियों के लिए मतदाता सूची में उनके नामों को कुशलतापूर्वक खोजना आसान हो जाएगा। चुनाव आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि ईआरओ द्वारा नियुक्त सभी बीएलओ को मानक फोटो पहचान पत्र जारी किए जाएं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि नागरिक मतदाता सत्यापन और पंजीकरण अभियान के दौरान बीएलओ को पहचान सके और उनके साथ आत्मविश्वास से बातचीत कर सके। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Patna पर जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने डॉक्टरों को मरीजों के लिए किसी विशेष कंपनी की दवाइयां नहीं लिखने और सिर्फ जेनेरिक दवाइयां लिखने का आदेश दिया है। राजस्थान उच्च न्यायालय पहले ही यह आदेश दे चुका है। दवा कंपनियों की मनमानी से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि यदि इस निर्णय का पूरे देश में पालन किया जाए तो इससे महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बिहार राज्य हज समिति द्वारा पटना में आयोजित शुभकामना संदेश दुआइयां मजलिस कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने हज भवन में आयोजित कार्यक्रम में हज यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। हज यात्रियों का दल इसके बाद गया के लिए रवाना हो गया। गया पहुंचने पर भी उनका स्वागत किया गया। यहां गया हवाई अड्डे से 59 महिला सहित 145 हज यात्रियों का जत्था मदीना के लिए रवाना हुआ। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविन्द्रन शंकरन ने बताया कि खेलों के महाकुंभ खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में उन्होंने कहा कि बिहार इस भव्य आयोजन का साक्षी बनेगा।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मेजबानी जिस दिन बिहार को मिला उस दिन से तैयारी शुरू हो गया और तैयारी का मुआयना करने के लिए, रिव्यू करने के लिए हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा हर जगह पर जाके तैयारी का वो खुद रिव्यू कर रहे हैं और कुछ सुझाव भी दे रहे हैं। जैसे कि आज राजगीर गए थे, कल गया गए थे, परसों पटना आए थे, तो आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कितना इन्वॉल्वमेंट पूरा बिहार सरकार इसमें है और ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से ये स्थापित होगा कि बिहार आज की तारीख में खेल की दुनिया में एक सुपर पावर हाउस बन गया है और इसमें करीब 8,500 बच्चे लोग आ रहे हैं।
खेल प्राधिकरण के महानिदेशक ने बताया कि बड़ी संख्या में खेल प्रतिभाएं इस आयोजन से निकलकर आएंगी।
पूरा खेलो इंडिया का जो यूथ गेम्स का जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का वो कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट यही है कि अंडर 18 का बालक बालिकाओं को हम पहले से ही टैलेंट स्काउटिंग प्रतिभा कोच करके उनको ओलंपिक्स के लिए हम तैयारी करें, नंबर 1। दूसरा, इंडिजीनियस स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने में क्या होता है, एक खेल के माहौल बनता है पूरा देश में और ग्रामीण क्षेत्र हो या जंगल क्षेत्र हो या पहाड़ क्षेत्र हो, हर क्षेत्र का लोगों को खेलने का मौका मिलता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इंडिजीनियस स्पोर्ट्स को हम आगे बढ़ा रहे हैं।
खेलों का महाकुंभ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 4 मई से शुरू हो रहा है। इस महा आयोजन को लेकर प्रदेश में आयोजित गौरव मशाल यात्रा का आज समापन हो गया। इसे लेकर पटना में कई स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके साथ ही मशाल यात्रा ने राज्य के सभी 38 जिलों का भ्रमण पूरा किया। इस यात्रा ने हजारों की संख्या में युवा खिलाड़ियों को प्रेरित किया और उनमें जोश भरने का काम किया। इस बीच खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। आज जम्मू कश्मीर से मार्शल आर्ट के खेल गतका की टीम गया पहुंची। दल का गया स्टेशन पर स्वागत किया गया। असम की महिला खिलाड़ियों की वॉलीबॉल टीम ने पटना पहुंचने पर आकाशवाणी समाचार से बातचीत की। टीम की खिलाड़ी प्रार्थना गोगोई ने टीम के अच्छे प्रदर्शन की आशा जताई।
प्रार्थना गोगोई, हम लोग बिहार में आया है और हम लोग फर्स्ट टाइम खेलो इंडिया के लिए क्वालिफाई किया है। हम लोग यूपी में स्कूल गेम्स खेला था। हम लोग बहुत मतलब कस करके लाइक क्वार्टर फाइनल तक गया था और हम लोग इससे पूरा ट्राई करेगा टू विन द मैच। बहुत ट्राई करेगा। हम लोग टीम पूरा जोश में है कि हम लोग इस बार मेडल लेके जाएगा और हम लोग कोच और मैनेजर हम लोग बहुत कैंप में बहुत हेल्प किया है हम लोग का क्वालिफाई।
खेल आयोजन को लेकर युवा खिलाड़ियों में काफी उत्साह है।
मेरा नाम मंजीत कुमार हुआ, मैं रग्बी का राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ। बहुत खुशी हो रही है, इतना बड़ा आयोजन खेलो इंडिया यूथ गेम हमारे बिहार में पहली बार हो रही है और इतने अच्छे से हो रही है जो कि आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही शानदार ओपनिंग सेरेमनी के लिए बहुत ही शानदार बहुत सारे व्यवस्था किया गया है जो कि लाइट शो और बहुत सारे डांस प्रोग्राम का भी आयोजन किया गया है। इस आयोजन से बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। बिहार सरकार ने भी ये ऐलान किया है कि मेडल और नौकरी पाओ, इसके तहत हमारे बहुत सारे खिलाड़ियों को बिहार पुलिस दरोगा में, सचिवालय में और क्लब वगैरह में बहुत सारे सभी लोगों को जॉब भी मिला है।
मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने आज नालंदा जिले के राजगीर में राजगीर खेल अकादमी सह खेल विश्वविद्यालय में नवनिर्मित खेल सुविधाओं का लोकार्पण किया। गया के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन ने तैयारियों के बारे में जानकारी दी।
जो भी खिलाड़ी हैं, सपोर्ट स्टाफ हैं, टेक्निकल ऑफिशियल्स हैं, आना शुरू हो गया है। हम लोगों ने पिपाड में IIM में रेलवे स्टेशन में कंट्रोल रूम का स्थापना।
रविवार को आकाशवाणी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के उद्घाटन समारोह की लाइव कमेंट्री करेगा। कार्यक्रम शाम 5:55 से शुरू होगा और शाम 7:30 तक या समारोह के अंत तक जारी रहेगा। यह न्यूज ऑन एयर ऐप, प्रसार भारती स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल और DTH पर उपलब्ध होगा। पटना के जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के आयोजन से पूर्व व्यापक प्रचार प्रसार और जन जागरूकता हेतु आज सुबह शहीद स्मारक से इको पार्क तक गौरव मशाल यात्रा परेड का आयोजन किया गया। यह टॉर्च 4 मई को प्रतियोगिता के उद्घाटन के अवसर पर पाटलिपुत्र खेल परिसर में पहुंचेगी। पटना स्थित विशेष न्यायाधीश मोहम्मद रुस्तम ने आज भ्रष्टाचार के एक मामले में आरोपी पटना सचिवालय ट्रेजरी के पूर्व सहायक अनूप कुमार त्रिवेदी को 3,000 रूपये रिश्वत लेने के आरोप को सत्य पाकर 1 वर्ष सश्रम कारावास और 10,000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुंबई में वेब्स शिखर सम्मेलन में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, देश में कंटेंट और आइडिया की कोई कमी नहीं है, भारत मीडिया और एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करने को तैयार है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची को प्रभावी और विश्वसनीय बनाने के लिए इसे जन्म मृत्यु रजिस्टर से जोड़ने का निर्णय किया। हज यात्रा के लिए गया से 145 श्रद्धालुओं का पहला जत्था मदीना के लिए रवाना हुआ। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए देश भर से खिलाड़ियों के जत्थों का विभिन्न शहरों में पहुंचने का सिलसिला शुरू। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।